पहला कुरिन्थियों अध्याय एक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से, उस चर्च के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह में अलग किए गए और अलग होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे बारे में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उन्हीं की वजह से तुम लोग हर बात में, अर्थात बोलने में और सारे ज्ञान में बहुत बढ़ गए। यही यीशु मसीह की सच्चाई का सबूत है। तुम में किसी वरदान की कमी नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार आने का इंतजार भी करते हो। वह तुम्हें आखिर तक मजबूत रखेंगे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पर निर्दोष खड़े रह सको। परमेश्वर विश्वसनीय हैं, जिन्होंने तुम्हें अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हिस्सेदार होने के लिए बुलाया है। हे भाइयों बहनों, मसीह यीशु जो हमारे प्रभु हैं, उनकी तरफ से मैं विनती करता हूं कि तुम एक मत रखो, तुम में फूट न हो, और एक उद्देश्य रखकर एकता बनाए रहो। खलोए के परिवार के लोग मुझे बता चुके हैं कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। तुम में से कुछ लोग अपने आप को पौलुस, कुछ अपुल्लोस, कुछ कैफा और कुछ मसीह का अनुयायी बता रहे हैं। क्या यीशु मसीह बंट गए हैं? क्या पौलुस के नाम में तुम्हें बपतिस्मा दिया गया था? परमेश्वर की बड़ाई हो कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर तुम में से किसी और व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि कोई ये कहे कि उसका बपतिस्मा मेरे नाम से हुआ है। मैंने स्तेफनास के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। इसके अलावा मुझे याद नहीं कि किसी और को मैंने बपतिस्मा दिया, इसलिए कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने को भेजा है, वो भी चतुराई दिखाने के लिए नहीं, ताकि लोगों का ध्यान मसीह के क्रूस से हट जाए। क्रूस की सच्चाई नाश हो जाने वाले लोगों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम मुक्ति पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। लिखा है कि
मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश कर डालूंगा और बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमानी को रद्द कर डालूंगा।
कहां रहा बुद्धिमान? कहां गया मूसा की किताबों का विशेषज्ञ? इस युग का दर्शन शास्त्री कहां है? क्या परमेश्वर ने इस दुनिया के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? परमेश्वर ने अपनी बुद्धिमानी के अनुसार कभी यह नहीं चाहा कि इस दुनिया के ज्ञान से लोग उन्हें जाने। परमेश्वर को यह ठीक लगा कि दिए गए संदेश की मूर्खता के द्वारा उनको पाप क्षमा दें जो विश्वास करेंगे। यहूदी लोग अद्भुत चिन्ह की मांग करते हैं, और यूनानी ज्ञान की बातों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम उस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बारे में बताते हैं जिससे यहूदी ना खुश होते हैं और जिसे दूसरे सभी लोग मूर्खता समझते हैं। जिन्हें बुलाया गया है, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। बेकार दिखने वाली परमेश्वर की योजना इंसानी योजना से बढ़कर और परमेश्वर के निर्बलता मनुष्यों के बल से कहीं ज्यादा है। भाइयों बहनों, याद करो, जब तुम्हें बुलाया गया उस समय दुनिया की दृष्टि में तुम में से कुछ ही बुद्धिमान समझे जाते थे और कुछ ही दौलतमंद और प्रभावशाली जाने जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों का चुनाव किया जो संसारिक दृष्टिकोण से मूर्ख समझे जाते थे, ताकि ज्ञानवान शर्मिंदा किए जाएं, और उन्हें भी जिन्हें संसार निर्बल समझता है, ताकि बलवान लज्जित हो जाएं। परमेश्वर ने इस दुनिया में नीच, तुच्छ और शून्य समझे जाने वालों को चुन लिया, ताकि जो बड़े समझे जाते हैं उन्हें कुछ न समझा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अहंकार न करे। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु से जोड़ दिया है, जो हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से ज्ञान, खराई, शुद्धता और छुटकारा ठहरे हैं, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि
जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। भाइयों बहनों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाने तुम्हारे पास आया था, तो उपदेश देने की योग्यता आकर्षक शब्दों और ज्ञान के साथ नहीं आया था। उस समय मेरा फैसला यह था कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के अलावा और किसी विषय पर चर्चा न करूं। मैं कमजोरी और डर के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा था। मेरी भाषा और उपदेश में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थीं। मेरा संदेश पवित्र आत्मा की शक्ति का सबूत था, इसलिए कि तुम्हारा भरोसा इंसानी ज्ञान के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर की शक्ति पर टिक जाए। हम समझदार लोगों के बीच बुद्धि की बातें कहते हैं, लेकिन इस दुनिया और दुनिया के शासकों की बुद्धि नहीं, जो कुछ समय बाद रहते ही नहीं है। परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के भेद को बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के पहले ही से हमारी महिमा के लिए निश्चित कर दिया था। इस युग के किसी भी शासक ने इस सच्चाई को न जाना। यदि ऐसा होता तो वे तेजोमय प्रभु को क्रूस की सजा न देते, लेकिन जैसा लिखा है,
जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने सुनी नहीं, और जो कुछ मनुष्य के मन में नहीं समाई, वो सब परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
वह सब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता दिया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब कुछ वरन परमेश्वर की गहराई की बातों को जांचता है। एक व्यक्ति की आत्मा के अलावा उसके बारे में कौन जान सकता है? इसी तरह परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जान सकता। हमने इस दुनिया का आत्मा नहीं लेकिन वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की तरफ से है, ताकि हम परमेश्वर द्वारा मुफ्त मिलने वाली बातों को जान सकें। मानवीय बुद्धि के द्वारा सिखाए गए शब्दों से हम इन बातों को नहीं कहते हैं। आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें हम उन शब्दों से बताते हैं जो पवित्र आत्मा से दिए जाते हैं, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर सुनाते हैं। शारीरिक जन परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए वे बेवकूफी की बातें हैं। इसलिए कि उन्हें आत्मिक तरीके से जाना जाता है, वह उन्हें समझ नहीं सकता है। आत्मिक जन हर बात की पहचान रखता है, लेकिन उसे लोग समझ नहीं पाते हैं।
कौन प्रभु के विचारों को जान सकता है या उन्हें सलाह दे सकता है?
लेकिन हम में मसीह के समान मन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। भाइयों बहनों, आत्मिक लोगों की तरह मैं तुमसे बातें न कर सका। मैं तुमसे शारीरिक या मसीह में शिशुओं की तरह ही बातें कर सका। ठोस खाने के बजाय मैंने तुम्हें पीने के लिए दूध दिया था, क्योंकि तुम मेरा भोजन खाने के लायक नहीं थे। सच पूछा जाए तो अभी भी तुम तैयार नहीं हो। अभी तक तुम शारीरिक हो, इसलिए जबकि तुम्हारे बीच अब तक ईर्ष्या और झगड़े हैं, तो तुम क्या अविश्वासियों की तरह पुराने स्वभाव में नहीं जी रहे हो? जब तुम में से एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम संसारिक मनुष्य की तरह नहीं हो? पौलुस और अपुल्लोस कौन है? मात्र सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है। प्रभु ने जो काम हमें दिया हमने किया। बोने का काम मैंने किया था और अपुल्लोस ने सींचने का, लेकिन बढ़ाने का काम परमेश्वर ने किया। इसलिए न बोने वाला कुछ है न सींचने वाला, क्योंकि बढ़ाने वाले तो परमेश्वर ही हैं। बोने वाले और सींचने वाले का मकसद एक ही होता है, लेकिन हर जन अपनी मेहनत के अनुसार मजदूरी पाएगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से एक योग्य राजमिस्त्री की तरह नींव रखी, दूसरा उसके ऊपर बनाता जाता है। बनाते समय उसे चाहिए कि सावधानी बरते। यीशु मसीह को छोड़कर जो नींव है, कोई दूसरी नींव नहीं रखी जा सकती है। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, कीमती पत्थर लकड़ी या घास फूस रखता है तो हरेक का काम उस दिन दिख जाएगा, क्योंकि वो दिन प्रकट कर देगा, ऐसा आग के कारण होगा। आग ही जांचेगी कि हर एक जन ने कैसा काम किया है। नींव पर बना हुआ काम यदि बचा रहेगा तो बनाने वाले को मजदूरी मिलेगी, यदि वो काम जल जाएगा तो बनाने वाला नुकसान उठाएगा। बनाने वाला तो बच जाएगा, लेकिन इस तरह जैसे कोई लपटों से बच जाता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है? यदि कोई परमेश्वर के भवन को बर्बाद करे, परमेश्वर उस व्यक्ति को बर्बाद करेगा, इसलिए कि परमेश्वर का भवन पवित्र है और तुम ही वह भवन हो। गलत या झूठे विचारों को मन में जगह मत दो। वर्तमान में यदि कोई अपने आप को अकलमंद समझता है तो उसे बेवकूफ बन जाना चाहिए, ताकि वह सचमुच में अकलमंद बन सके। परमेश्वर की निगाह में इस दुनिया का ज्ञान बेवकूफी है, जैसा कि लिखा है,
वह बुद्धिमान को उसकी चतुराई में फंसा देते हैं।
फिर से,
प्रभु बुद्धिजीवियों के तर्क को जानते हैं कि वे सब बेकार हैं।
इसलिए कोई भी इंसानी अगुओं पर घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही है। चाहे पौलुस हो या अपुलोस, कैफा हो या संसार, जीवन हो या मौत, वर्तमान हो या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर के हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4। लोगों को हमें मसीह के सेवकों की तरह और परमेश्वर के भेदों का प्रबंधक समझना चाहिए। एक प्रबंधक में विश्वास योग्यता का होना जरूरी है। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही छोटी बात है कि तुम लोग या इंसानी अदालत मेरा मूल्यांकन करे। यहां तक कि इस विषय पर मैं खुद अपना मूल्यांकन नहीं करता। अपने बारे में किसी दोष के बारे में मुझे एहसास नहीं है, लेकिन इस आधार पर मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता। मुझे परखने वाले यीशु प्रभु हैं। इसलिए समय से पहले किसी बात पर फैसला मत सुनाओ। यीशु के आने तक इंतजार करो। वह छुपी हुई बातों को रोशनी में ले आएंगे और मनों का इरादा प्रकट करेंगे। तभी हर जन परमेश्वर से शाबाशी पाएगा। तुम्हारे लाभ के लिए इन बातों को मैंने अपने और अपुलोस के ऊपर लागू किया है कि वचन से मैंने क्या सीखा था। चाहा था यदि तुम भी अपने जीवन में लागू करो तो एक अगुए से दूसरे अगुए की तुलना करके घमंड नहीं करोगे। किस वजह से तुम ऐसी नापतोल करते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें परमेश्वर से न मिला हो? यदि तुम्हें मिला है, तुम्हें घमंड क्यों होता है जैसे कि तुम्हें सब कुछ भेंट स्वरूप न मिला हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम रईस हो चुके हो। परमेश्वर के राज में तुम हमारे बिना राज करने लगे हो। मेरी कामना यह थी कि तुम राज करते होते, इसलिए कि तब हमने तुम्हारे साथ राज किया होता। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को युद्ध में एक फौज की विजय परेड की आखिरी पंक्ति में राजनैतिक युद्ध बंदियों की तरह जो मारे जाने वाले हैं स्वर्गदूतों और लोगों को दिखाने के लिए रखा है। मसीह के लिए हम बेवकूफ से लगते हैं, लेकिन तुम मसीह में अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। हम कमजोर हैं, तुम ताकतवर हो। तुम्हें आदर मिलता है, हमें बेइज्जती। इस समय तक हम भूखे प्यासे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, बुरा बर्ताव सहते हैं और सिर के ऊपर छत तक नहीं है। हम अपने ही हाथों से मेहनत करते हैं। जब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं हम आशीष देते हैं। जब हमें सताया जाता है सहते रहते हैं। जब हमारे बारे में झूठ बोला जाता है हम दोस्त की तरह जवाब देते हैं। अभी तक हमें दुनिया की धूल मिट्टी और कचरा समझा जाता है। ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे जानकर सुधार करना चाहता हूं। मसीह में तुम्हारे 10,000 गुरु हो सकते हैं, लेकिन सभी पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा मैं मसीह में तुम्हारा पिता हूं। इसीलिए जोर डालकर कहना चाहता हूं, मेरी तरह जीवन जियो। इसी कारणवश मैंने मसीह में अपने प्रिय और विश्वासयोग्य बेटे तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजा है। मेरी जीवन शैली के बारे में वह तुम्हें याद दिलाएगा। जहां कहीं मैं जाता हूं, हर एक चर्च में वैसा ही सिखाता हूं। कुछ लोग बहुत घमंडी हो चुके हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। प्रभु ने चाहा तो मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। तब मैं ये जान लूंगा कि ये लोग बनावटी भाषण देते हैं या सचमुच में परमेश्वर की शक्ति रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का राज्य बकबक करने में नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से जीना है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारे पास अनुशासन की छड़ी के साथ आऊं या प्रेम और सज्जनता से? पहला कुरिन्थियों अध्याय 5। तुम्हारे बीच में यौन अनैतिकता के बारे में सूचना मिली है, ऐसी गंदी हरकत जिसे गैर मसीही भी सहन नहीं कर सकते। वो यह कि एक आदमी अपने पिता की पत्नी के साथ रहता है और शोकित होने तथा उस आदमी को बाहर करने के बजाय तुम घमंड कर रहे हो। इसलिए हालांकि मैं खुद वहां पर नहीं हूं, मैं आत्मा में वहां हूं और मानो वहां मौजूद होकर फैसला सुना चुका हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आत्मा में वहां प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ उपस्थित होऊंगा। इस आदमी की देह के नाश होने के लिए इसे शैतान के सुपुर्द कर दो, ताकि प्रभु के दिन में उसकी आत्मा बच सके। इस संबंध में तुम्हारा घमंड ठीक नहीं है। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है? अपने बीच में से पुराने खमीर को निकाल डालो, ताकि नया गूंधा हुआ आटा हो जाओ। तुम तो सच में बिना खमीर के हो, इसलिए कि मसीह हमारे फसह के मेमने कुर्बान हो चुके हैं। इसलिए हम बुराई और अशुद्धता के पुराने खमीर के साथ त्योहार न मनाएं, लेकिन बिना खमीर की उस रोटी से जो ईमानदारी और सच्चाई की है। मैंने तुमसे कहा था कि व्यभिचारियों में लिप्त लोगों के साथ मत रहो। मेरा मतलब यौन पाप में लिप्त अविश्वासी, लालची, अंधेर करने वाला, मूर्ति पूजक नहीं, क्योंकि ऐसे में तो तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि जो मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन यौन पाप, लालच, मूर्ति पूजा, गाली गलौच, मतवालापन और अंधेर करने के शिकार हैं, ऐसे लोगों के साथ मत उठो बैठो। मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बाहर वालों का इंसाफ करूं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चर्च में जो लोग पाप में बने हुए हैं तुम उनका इंसाफ करो। परमेश्वर तो बाहर वालों का न्याय करेंगे, लेकिन उस कुकर्मी को तुम चर्च से बाहर निकालो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6। आपस में किसी दूसरे के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा होने पर अपने विश्वासी भाइयों के पास सुलझाने के बावजूद संसारिक अदालत में क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यीशु के लोग इस दुनिया का न्याय करेंगे? इसलिए यदि तुम लोग इस दुनिया का न्याय करने वाले हो, तो क्या मामूली झगड़ों को निपटा नहीं सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे? फिर ये हल्के फुल्के झगड़ों को क्यों नहीं सुलझा सकते? इसलिए यदि तुम्हारे यहां लड़ाई झगड़े हैं, तो तुम उनके पास क्यों जाते हो जो चर्च के आत्मिक लोग नहीं है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम शर्म महसूस करो। क्या तुम्हारे चर्च में ऐसा कोई बुद्धिमान इंसान नहीं जो तुम्हारे झगड़ों को हल कर सके? इसके विपरीत एक मसीही दूसरे की खिलाफत में अविश्वासियों के सामने अदालत में जाता है। तुम्हारे बीच मुकदमे इस बात का सबूत है कि तुम पहले ही से हार चुके हो। अन्याय क्यों नहीं सह लेते? नुकसान क्यों नहीं सह लेते? लेकिन तुम खुद अन्याय करते और धोखा देते हो, वो भी अपने भाई बहनों को। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखे में मत रहो। वैश्यावृत्ति में लगे, मूर्ति पूजा में लगे, व्यभिचारी, पुरुषगामी और समलिंगी, चोर, लालची, पियक्कड़, गाली देने वाले और अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तुम में से कितने ऐसा ही जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में हमारे परमेश्वर के आत्मा से तुम धोए गए, शुद्ध किए गए और निर्दोष ठहराए गए। तुम लोग कहते हो सब कुछ की इजाजत है, लेकिन सब कुछ फायदेमंद नहीं है। सब कुछ की अनुमति है, लेकिन मैं किसी भी बात का गुलाम न बनूंगा। खाना पेट के लिए है और पेट खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर दोनों ही को बर्बाद करेंगे। यह देह यौन अनैतिकता के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने जिस तरह से यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमें भी अपनी सामर्थ से जिला उठाएंगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वैश्या के अंग बनाऊं? क्या तुम्हें नहीं मालूम जो वैश्या से संबंध करता है उसके साथ जुड़ जाता है? इसलिए कि ऐसा कहा गया है, दो जन एक देह हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है वह उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से भागो, कोई गुनाह देह पर इतना असर नहीं डालता है जितना यौन अनैतिकता। ये गुनाह अपनी देह के विरोध में है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह तुम में है, तुम्हें परमेश्वर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम बड़ी कीमत देकर खरीदे गए थे, इसलिए तुम्हें अपनी देह से परमेश्वर को आदर देना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7। अब उन बातों के बारे में जो तुमने मुझे लिखी थीं, हर व्यक्ति के लिए भला यह है कि वह यौन पाप से बचा रहे। लेकिन व्यभिचार के पाप से बचने के लिए हर एक पुरुष की अपनी पत्नी और हर एक महिला का अपना पति होना चाहिए। पति अपनी पत्नी के अधिकार का और पत्नी अपने पति के अधिकार की इज्जत करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पति को है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, लेकिन उसकी पत्नी को है। एक दूसरे को इस अधिकार से वंचित मत रखो। सिर्फ सीमित समय तक आपसी सहमति से ही यौन संबंध में विराम आए, ताकि प्रार्थना के लिए वक्त मिले। फिर यौन संबंध रखो ताकि तुम्हारे आत्म संयम में कमी की वजह से शैतान तुम्हारी परीक्षा न कर सके। मैं ये सलाह या अनुमति अपने एक मत के रूप में दे रहा हूं, न कि ऐसा करना ही है। मैं यही चाहूंगा कि लोग मेरी तरह हों, लेकिन लोगों को परमेश्वर से अलग अलग तरह के वरदान मिले हैं। अविवाहितों और विधवाओं से तो मैं यही कहूंगा कि वे मेरे समान रहें, लेकिन यदि वे आत्म संयमी नहीं हो सकते तो शादी कर लें, इसलिए कि अपूर्ण यौन इच्छा से परेशान होने के बजाय शादी कर लेना बेहतर है। शादीशुदा लोगों को मैं नहीं बल्कि प्रभु आज्ञा देते हैं, और वो ये है, एक पत्नी को अपने पति को तलाक नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि वो ऐसा करती है उसे अविवाहित ही रहना चाहिए, या फिर से अपने पति से मेल कर लेना चाहिए। पति को भी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए। शेष लोगों से मैं कह रहा हूं, प्रभु नहीं। यदि किसी की पत्नी अविश्वासी है लेकिन अपने पति के साथ रहने के लिए राजी है, तो उसे अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए। यदि किसी महिला का अविश्वासी पति उसके साथ रहने के लिए तैयार हो तो वह पति को न छोड़े। अविश्वासी पति अपनी पत्नी की वजह से पवित्र ठहरता है, अविश्वासी पत्नी अपने पति की वजह से पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध ठहरते, लेकिन अभी वे शुद्ध हैं। लेकिन यदि अविश्वासी तलाक की मांग करे तो ठीक है, दे दो। इस परिस्थिति में विश्वासी जीवन साथी किसी तरह से फिर बंधा हुआ न रहेगा, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेल कर लें। पत्नी, तुम्हें क्या पता कि तुम अपने पति का उद्धार करा लोगी, या पति कि तुम अपनी पत्नी को उद्धार के अनुभव तक ला सकते हो? तुम में से प्रत्येक जन को प्रभु ने जिस स्थिति में रखा है उसी बुलाहट में बना रहे। सभी चर्च के लिए यही मेरा निर्देश है। उदाहरण के लिए, विश्वासी बनने से पहले जिस व्यक्ति का खतना हुआ हो वह उसमें बदलाव लाने का यत्न न करे। जिसने कभी खतना न कराया हो और वह यीशु को ग्रहण कर लेता है, उसे खतना करवाने की जरूरत नहीं। खतना करवाने या न करवाने से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। हर एक व्यक्ति को उसी हालत में रहना चाहिए जिसमें उसे बुलाया गया है। क्या यीशु को अपनाए जाने के समय तुम गुलाम थे? परेशान मत हो, लेकिन अगर तुम गुलामी से आजाद हो सकते हो तो अवसर का लाभ उठाओ। इसलिए कि जो गुलामी की अवस्था में प्रभु में आया वह प्रभु का आजाद किया हुआ है। इसी तरह से जो किसी की गुलामी में न रहा हो उद्धार पाने से मसीह का गुलाम बन चुका है। तुमको दाम देकर खरीदा गया है, इसलिए इंसानों के गुलाम मत बनो। भाइयों बहनों, तुम्हारे विश्वासी बनने के समय तुम जिस स्थिति में थे उसी में परमेश्वर के साथ रहो। कुंवारियों के संबंध में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन प्रभु की दया से मेरा जो मत है उस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा सोचना यह है कि वर्तमान के कठिन समयों को देखते हुए जो व्यक्ति जैसी हालत में है उसी में रहे। जिसके पास पत्नी है तलाक की न सोचे, यदि पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज में न लगे। यदि तुम शादी कर लेते हो तो तुमसे चूक नहीं हुई है। यदि कुंवारी शादी कर लेती है तो इसे भी चूक जाना नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग विवाह करेंगे वे इस संसार में शारीरिक दुखों का सामना करेंगे। मैं तुम्हें सब परेशानियों से बचाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूं समय कम है, इसलिए जिनके पास पत्नियां हैं वो ये मानकर चलें कि उनके पास पत्नी है ही नहीं। जो लोग रोते हैं, खुशी मनाते हैं या चीजें खरीदते हैं, उन्हें अपने रोने, खुशी मनाने, वस्तुएं खरीदने में ही खो नहीं जाना चाहिए। इस संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हों कि उन सब बातों में डूब न जाएं, क्योंकि इस जगत के तौर तरीके बदलते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त जीवन जियो। एक अविवाहित व्यक्ति प्रभु की बातों के बारे में चिंतित रहता है कि प्रभु को किस तरह प्रसन्न रखे, लेकिन शादीशुदा आदमी इस दुनिया की बातों में उलझा रहता है कि अपनी पत्नी को किस तरह संतुष्ट रखे। उसका ध्यान बटा रहता है। अविवाहित महिला या कुंवारी प्रभु की बातों के बारे में सोचती रहती है कि वह पूरी तरह से प्रभु के प्रति देह और आत्मा में पवित्र रहे, लेकिन एक विवाहित महिला को पत्नी की जिम्मेदारियों को पूरा करने और पति को संतुष्ट करने का ख्याल रहता है। यह मैं तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूँ, न कि इसलिए कि तुम पर रोक लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जैसा शोभा देता है किया जाए और बिना किसी रुकावट के तुम प्रभु की बातों में लगे रहो। यदि किसी पुरुष को यह लगता है कि वो अपनी कुंवारी की शादी के बारे में गंभीर नहीं है और उसकी जवानी ढलती जा रही है तो उसकी शादी होने दे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जिसने अपना मन बना लिया है और उसको जरूरत नहीं है लेकिन अपनी इच्छा को वश में कर सकता है और कुंवारी को ब्याहता नहीं, वह भी ठीक करता है। इसलिए जो कुंवारी का विवाह होने देता है वह अच्छा करता है, लेकिन जो नहीं कराता है वह और भी अच्छा करता है। जब तक पति जीवित है पत्नी उससे जुड़ी हुई है, लेकिन यदि उसका पति मर जाए तो वह किसी भी विश्वासी से विवाह कर सकती है। मेरे अपने विचार से वह खुश रहेगी। यदि वह जैसी है वैसी रहे, मैं सोचता हूं कि जो सलाह मैं दे रहा हूं वह परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8। मूर्तियों के सामने चढ़ाई वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं कि इस विषय पर हम सभी को सच्चाई का ज्ञान है। इस तरह का ज्ञान हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से संबंधों में बढ़त होती है। यदि कोई यह समझता है कि उसके पास हर एक उत्तर है तो जैसा उसको जानना चाहिए वह अब तक नहीं जानता। लेकिन जो इंसान परमेश्वर से प्रेम करता है उसे परमेश्वर जानते हैं। इसलिए जहां चढ़ाई हुई चीजों को खाने का सवाल है, हम जानते हैं कि मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है और एक परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर कहलाए जाने वाले कुछ ईश्वर और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर पिता हैं, जिनसे सब कुछ है और जिनके लिए हम जीवित हैं। एक ही प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और हमें जीवन दिया। किंतु हर व्यक्ति ये बात नहीं जानता। कुछ लोग जो अब तक मूर्तियों को कुछ समझते हैं, वे चढ़ाई हुई चीजों के उपभोग को सचमुच के ईश्वरों की उपासना समझते हैं। इस प्रकार उनके कोमल विवेक को दुख पहुंचता है। सच ये है कि हम जो खाते हैं उससे परमेश्वर की तरफ से शाबाशी नहीं पाते हैं। उसे खाने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा और यदि खाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोमल विवेक रखने वाले व्यक्ति को तुम्हारी आजादी से चोट पहुंचे। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसे सच्चाई मालूम है, क्या तुम्हें मूर्ति के मंदिर में खाते देख चढ़ावे में से खाने के लिए प्रेरित नहीं होगा? इसलिए तुम्हें सही ज्ञान होने के कारण तुम्हारा वह भाई बहन जिसके लिए मसीह ने मौत सही बर्बाद हो सकता है। यदि इस तरह तुम अपने भाई या बहन के विरोध में अपराध करके उसके कोमल विवेक को ठेस पहुंचाते हो तो मसीह के विरोध में अपराध करते हो। इस कारणवश यदि भोजन खाने से मेरे भाई या बहन के कोमल विवेक को ठेस पहुंचती है तो मैं चढ़ाई हुई वस्तु कभी नहीं खाऊंगा, ताकि वह व्यक्ति मूर्ति पूजा में न फंस जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9। क्या मैं आजाद नहीं हूं? क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने प्रभु यीशु को नहीं देखा? क्या तुम मेरे कारण प्रभु के नहीं हो? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं हूं तो कम से कम तुम्हारे लिए हूं। तुम ही इस बात के सबूत हो कि मैं प्रभु का प्रेरित हूं। जो लोग मेरे अधिकार के बारे में सवाल करते हैं उनको मेरा यही उत्तर है। क्या हमें आर्थिक सहयोग लेने का अधिकार नहीं है? क्या हमें इस बात का अधिकार नहीं कि एक विश्वासिनी से विवाह करें, जिस तरह से दूसरे प्रेरित प्रभु के भाई और पत्रस ने किया है? क्या सिर्फ बरनबास और मुझे अधिकार नहीं कि कमाई न करें? ऐसा कौन सा सैनिक है जो बिना मजदूरी सेना में काम करता हो? ऐसा कौन है जो अंगूर की बारी तो लगाता है लेकिन उसके अंगूर नहीं खाता है? ऐसा कौन है जो भेड़ों की देखरेख तो करता है लेकिन उनके दूध का इस्तेमाल नहीं करता है? क्या ये सब बातें मेरे दिमाग की उपज हैं? यह नियम शास्त्र भी यही नहीं सिखाता? इसलिए कि मूसा की किताब में लिखा है,
जो बैल चक्की चलाता है उसको दाना खाने से मत रोकना।
क्या परमेश्वर को केवल बैलों की ही चिंता है, या क्या वह हमारी जरूरतों को पूरा किए जाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं? हाँ, यह हमारे लिए भी लिखा गया था, ताकि जो हल चलाता है और जो बालों को कुचलता है दोनों फसल का लाभ उठा सकें। यदि हमने तुम्हारे बीच आत्मिक आशीषों को बोया तो क्या तुम्हारी भौतिक आशीषों के हम भागीदार नहीं हो सकते? यदि दूसरों को तुमसे आर्थिक सहयोग लेने का अधिकार है तो क्या हमें उनसे अधिक अधिकार नहीं है? लेकिन हमने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हम सब कुछ सहते हैं ताकि हम मसीह के सुसमाचार में रुकावट न बने। क्या तुम्हें पता नहीं कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं मंदिर की रोटी खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे चढ़ाई हुई वस्तुओं के हिस्सेदार बनते हैं? इसी तरह प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनके खर्चे सुनने वालों से ही पूरे किए जाएं। लेकिन मैंने इनमें से किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं किया। मैं इसलिए लिख भी नहीं रहा हूं कि मेरे लिए कुछ किया जाए। सच पूछो तो बजाय इसके कि मेरे बिना मजदूरी लिए संदेश देने के घमंड से कोई मुझे वंचित करे, मेरा मर जाना भला है। इसलिए कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, मेरे पास गर्व करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं विवश होता हूं। यदि मैं खुशी का संदेश न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं खुद की इच्छा से ऐसा करता हूं तो मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता या चुनाव नहीं, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो फिर मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या? यह तो वो अवसर है जो मुझे दूसरों से बिना पैसा लिए खुशी का संदेश सुनाना है। हालांकि मैं आजाद हूं और किसी के अधीन नहीं हूं, फिर भी तमाम लोगों को मसीह के पास लाने के लिए मैं सभी का गुलाम बन चुका हूं। यहूदियों को मसीह में लाने के लिए जब मैं उनके साथ था, उनके नियम शास्त्र का पालन करने के समान बना, हालांकि मैं उस नियम शास्त्र के अधीन नहीं था। जब मैं गैर यहूदियों के साथ हूं, जो कि यहूदियों के नियम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, मैं भी नियम शास्त्र के अधीन नहीं हूं ताकि उन्हें मसीह तक ला सकूं, लेकिन परमेश्वर के नियम शास्त्र को नजरअंदाज नहीं करता। मैं मसीह के नियम का पालन करता हूं। जो कोमल विवेक के हैं उनके लिए मैं कोमल विवेक वाला बना ताकि उन्हें जीत सकूं। सभी लोगों के लिए मैं सब कुछ बन गया ताकि तमाम लोगों को उद्धार के अनुभव में ला सकूं। यह सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए करता हूं ताकि दूसरे लोगों के साथ इसमें हिस्सेदार बन सकूं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि दौड़ में सभी दौड़ने वाले दौड़ते हैं लेकिन केवल एक ही इनाम जीत पाता है? इसलिए जीत का लक्ष्य रखो। हर एक पहलवान को सब बातों में खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एक नष्ट हो जाने वाले मुकुट के लिए वो ऐसा करता है, लेकिन हम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए। इसलिए मैं न बिना किसी लक्ष्य के दौड़ता हूं न हवा में मुक्केबाजी करता हूं। बजाय इसके मैं अपनी देह को काबू में करके अपना गुलाम बनाता हूं ताकि दूसरों को संदेश देकर मैं स्वयं अयोग्य न ठहरूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10। भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे पूर्वज बादल के नीचे थे और समुद्र पार कर गए। उन सभी को बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा दिया गया। सभी ने एक ही आत्मिक खाना खाया, सभी ने एक ही आत्मिक पानी पिया, इसलिए कि वे अपने साथ साथ चलने वाली आत्मिक चट्टान जो मसीह थे उनसे पीते थे। लेकिन परमेश्वर उनमें से अधिकतर लोगों से खुश नहीं थे, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। ये घटना हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी ताकि उनके समान हम बुरी वस्तुओं को न चाहें। इसलिए उनमें से कुछ की तरह मूर्ति पूजक न बनो, जैसा कि लिखा है,
खाने पीने के लिए लोग बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे।
उनमें से अनेक लोगों की तरह हम व्यभिचार न करें। इसी वजह से एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए थे। हम प्रभु को न परखें, क्योंकि ऐसा करने के कारण कुछ सांपों से बर्बाद किए गए। जैसे उनमें से कुछ कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले ने उन्हें मार डाला, तुम कुड़कुड़ाना नहीं। उनके साथ घटने वाली ये वारदातें हमारे लिए नसीहत बन गई। हम जो इस युग के अंत में रहते हैं, ये बातें हमारे सीखने के लिए लिखी गई थीं। इसलिए जो सोचता है कि वह डगमगा नहीं सकता, सतर्क रहे कि कहीं गिर न जाए। ऐसे किसी प्रलोभन का सामना तुमने नहीं किया जिसका सामना दूसरे लोग करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह सहने से बाहर तुम्हें किसी प्रलोभन में फंसने नहीं देंगे, लेकिन प्रलोभन से बच निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे ताकि तुम सह सको। इसलिए मेरे दोस्तों, मूर्ति पूजा से भागो। तुम लोग तो समझदार हो, जो मैं कह रहा हूं स्वयं उसे परखो। क्या जिस धन्यवाद के कटोरे में हम भाग लेते हैं वह मसीह के खून में सहभागिता नहीं है? क्या जिस रोटी को हम तोड़ते हैं वह मसीह की देह में हिस्सा लेना नहीं है? इसलिए कि रोटी एक है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सभी एक रोटी ही में से खाते हैं। इसराइली लोगों पर नजर डालो, क्या वेदी के बलिदानों को खाने वाले एक वेदी के साथ सहभागी नहीं होते हैं? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूर्तियां या उन पर चढ़ाई हुई वस्तुएं कुछ मायने रखती हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि गैर यहूदी जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वह दुष्ट आत्माओं के लिए होता है, परमेश्वर के लिए नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साथ किसी तरह से साझा करो। तुम दुष्ट आत्माओं के प्याले और प्रभु के प्याले में हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में भागीदार नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु की ईर्ष्या को उकसा रहे हैं? क्या हम प्रभु से अधिक शक्तिशाली हैं? सब कुछ की अनुमति है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। सब बातों की अनुमति है, लेकिन सब बातों से उन्नति नहीं होती है। अपनी ही भलाई की मत सोचो, लेकिन दूसरों की भलाई की भी सोचो। बिना प्रश्न किए हुए बाजार में मिलने वाले मांस को निसंकोच खाओ, इसलिए कि पृथ्वी और इसमें पाई जाने वाली हर वस्तु प्रभु की है। यदि तुम्हें कोई गैर मसीही खाने पर बुलाए और तुम जाना चाहो, तो जो परोसा जाता है बिना विवेक की उलझन के खा लो। लेकिन यदि कोई तुमसे कहता है ये प्रसाद है, तो उस बताने वाले व्यक्ति और उसके विवेक के कारण मत खाओ, तुम्हारा नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति का विवेक, इसलिए कि दूसरे के विवेक से मेरी स्वतंत्रता को क्यों नापा जाए। यदि मैं खाई जाने वाली वस्तु के लिए धन्यवाद देता हूँ, तो फिर मैं उसके लिए दोषी क्यों ठहराया जाता हूँ। इसलिए जो तुम खाओ पियो या करो, सब कुछ परमेश्वर के सम्मान को बढ़ाने के लिए करो। तुम यहूदियों, यूनानियों, परमेश्वर के चर्च या किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए रुकावट या रोड़ा न बनो कि वो मसीह के पास न आए या मसीह में उन्नति न कर पाए। इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुक्ति का कारण बन सकूं, मैं सब बातों में सबको खुश करना चाहता हूं और मुझे अपने लाभ की चिंता नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11। जिस तरह से यीशु मसीह मेरे लिए एक उदाहरण है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए एक उदाहरण बने, इसलिए कि सब बातों में तुम मुझे याद करते हो और शिक्षाओं का पालन ठीक उसी तरह करते हो जैसा मैंने तुम्हें सौंपा था, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये समझ लो कि प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांक कर प्रार्थना करता या नबुवत करता है, वह अपने सिर की बेइज्जती करता है। जो स्त्री बिना सिर ढांके हुए प्रार्थना या नबुवत करती है, वह अपने सिर की बेइज्जती करती है, क्योंकि वह ऐसी स्त्री की तरह है जिसने सिर मुंडवा लिया है। यदि स्त्री अपना सिर न ढांके तो वह अपने बाल भी कटवा ले, लेकिन यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना शर्म की बात हो तो वह अपना सिर ढांके। पुरुष के लिए अपना सिर ढांकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर की समानता में बनाया गया था और परमेश्वर की महिमा है, लेकिन स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष का निर्माण स्त्री से नहीं हुआ, लेकिन स्त्री को पुरुष से बनाया गया था। न ही स्त्री के लिए पुरुष को बनाया गया, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री को बनाया गया था। इसी कारणवश एक महिला के सिर पर अधिकार का चिन्ह होना चाहिए। किसी भी हालत में प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष के और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब कुछ परमेश्वर से है। तुम ही सोचो, क्या स्त्री को बिना सिर ढांके परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम्हें नहीं पता कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए शर्म की बात है, लेकिन यदि स्त्री लंबे बाल रखती है तो यह उसे शोभा देते हैं, क्योंकि उसको बाल ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। लेकिन यदि कोई तर्क करना चाहे तो ये जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। लेकिन यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से लाभ नहीं लेकिन नुकसान होता है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम चर्च में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है। मैं इस बात को थोड़ा थोड़ा सच भी मानता हूं। तुम में गुटबाजी जरूर होगी, ताकि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। इसलिए तुम जो इकट्ठा होते हो तो यह इसलिए नहीं कि प्रभु भोज में हिस्सा लेने में तुम्हारी दिलचस्पी है, इसलिए कि खाने का समय आने से पहले ही बिना दूसरों के साथ अपना खाना बांटे कुछ लोग खा लेते हैं। इसलिए कुछ लोग भूखे रह जाते हैं और कुछ मतवाले हो जाते हैं। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है? या तुम लोग परमेश्वर के चर्च को तुच्छ जानते और गरीबों को शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या मैं तुम्हारी बड़ाई करूं? नहीं, इस बात के लिए मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं करूंगा। जो मुझे प्रभु से मिला वही मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। वो ये है कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद तोड़ते हुए कहा,
ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मुझे याद करने के लिए ऐसा करते रहना।
इसी तरह खाना खाने के बाद यीशु ने यह कहते हुए कटोरा भी लिया,
ये मेरे खून में नई वाचा का कटोरा है, जब कभी तुम इसमें से पियो तब तब मेरी याद के लिए ये करना।
जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, प्रभु के फिर से आने तक उनकी मौत का ऐलान करते हो। इस कारणवश जो कोई अयोग्य तरीके से रोटी खाए और प्रभु के प्याले में से पिए, वह यीशु की देह और खून के खिलाफ गुनाह करता है। एक व्यक्ति को अपना परीक्षण करना चाहिए और फिर रोटी में से खाना और प्याले में से पीना चाहिए, इसलिए कि जो देह को बिना आदर दिए खाता और प्याले में से पीता है, वह अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण से तुम में से बहुत से कमजोर और बीमार हैं और कुछ एक मर भी गए। यदि हमने खुद की जांच की होती तो हम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई न होती, लेकिन जब प्रभु हमें दंड देते हैं तो यह अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए होती है ताकि इस दुनिया के साथ हम दोषी न ठहराए जाएं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब तुम लोग खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे का इंतजार किया करो। यदि किसी को भूख लगती हो तो वह घर पर ही खा लिया करे, ताकि जब तुम इकट्ठे होते हो तब सजा की नौबत ना आए। दूसरी बातों के बारे में सलाह मशवरा मैं आने के बाद ही दूंगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12। भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के संबंध में अज्ञानता में रहो। तुम्हें याद है कि तुम जब मसीह के विश्वासी नहीं थे, गूंगी मूर्तों द्वारा अक्सर बहकाए जाते थे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में कोई नहीं कह सकता यीशु श्रापित है। इसी तरह बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। अलग अलग वरदान हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। अलग अलग सेवाएं भी हैं, लेकिन प्रभु एक ही है। परमेश्वर तमाम तरीकों से काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है जो हम सब में काम करते हैं। एक दूसरे की सहायता के लिए हम में से हर एक को पवित्र आत्मा का ये वरदान दिया जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि का वचन और किसी को ज्ञान का वचन मिलता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास तथा किसी और को उसी आत्मा से स्वस्थ कर देने का वरदान दिया जाता है। किसी को आश्चर्य के कामों को करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को तरह तरह की भाषाएं बोलने और किसी को उन भाषाओं का मतलब बताना। यह वही पवित्र आत्मा है जो सभी वरदानों को बांट देता है। वही निर्धारित करता है कि किसको कौन सा वरदान दे। जिस तरह से देह एक है और तमाम अंग हैं और सभी अंगों से मिलकर एक देह बनती है, इसी तरह मसीह है या मसीह की देह है। इसलिए कि एक देह में हम सबको एक ही आत्मा में बपतिस्मा दिया गया, चाहे यहूदी या यूनानी या गुलाम या स्वतंत्र, हम सभी को एक ही आत्मा दिया गया है। सच तो यह है कि देह मात्र एक अंग नहीं है, लेकिन अनेकों अंगों से मिलकर बनी है। यदि पैर कहे, इसलिए कि मैं हाथ नहीं, मैं देह का हिस्सा नहीं, ऐसा कहने से पैर देह की हिस्सेदारी खो नहीं देता। यदि कान कहे, इसलिए कि मैं आंख नहीं, मैं देह का हिस्सा नहीं हूं, ऐसा कहने पर भी कान देह में अपनी भूमिका को खो नहीं देता। यदि पूरी देह आंख होती तो सुनने का काम कौन करता? यदि पूरी देह कान होती तब सूंघने का काम किसने किया होता? लेकिन सच्चाई यह है कि जैसा परमेश्वर ने चाहा, उन्होंने देह में हर एक अंग को रखा है। यदि पूरी देह एक ही अंग होती तो क्या वो देह कहलाती भी? इसलिए ढेर सारे अंग हैं, लेकिन एक ही देह है। आंख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना ही सिर पैर से कह सकता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके विपरीत जो देह के अंग कमजोर और कम महत्व के दिखते हैं, वे ही बहुत जरूरी होते हैं। और देह के जिन अंगों को हम कम आदर के लायक समझते हैं, उन्हीं को अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग बहुत अधिक शोभनीय हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभनीय अंगों को उसकी जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को कम आदर मिला था उसी को बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न हो लेकिन सभी अंग एक दूसरे की चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सभी अंग खुश होते हैं। इसी तरह तुम सभी मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। परमेश्वर ने चर्च में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरित, दूसरे नबी, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर स्वस्थ करने वाले, भलाई करने वाले, प्रबंध करने वाले, तरह तरह की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको स्वस्थ करने का वरदान मिला है? क्या सब तरह तरह की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बढ़िया रास्ता बतलाता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। यदि मैं इंसानों और स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलूं, लेकिन मेरे पास प्रेम न हो तो मैं ठनठन करने वाला पीतल और झंझनाती झांझ की तरह हूं। यदि मैं नबुवत कर सकूं और सारे भेद और ज्ञान की बातें जान लूं और पहाड़ों को हटाने लायक विश्वास भी मेरे पास हो लेकिन प्रेम न हो तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपना सब कुछ दान कर डालूं और अपनी देह को जलाए जाने के लिए दे दूं लेकिन दूसरों से प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। प्रेम धीरज रखता है, दयालु है, यह जलन नहीं रखता, डींगे नहीं मारता, ना ही घमंड करता है, बदतमीजी नहीं करता, अपना फायदा नहीं देखता, झल्ला नहीं उठता, लोगों द्वारा पहुंचाई चोटों का लेखा जोखा नहीं रखता, अन्याय से खुश नहीं होता लेकिन सच्चाई से खुश होता है, यह सब कुछ सह लेता है, सब बातों में हमेशा भरोसा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब कुछ सहता जाता है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। नबुवतें हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, यदि ज्ञान है तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए कि हमारा ज्ञान और हमारी नबुवतें भी अधूरी हैं, लेकिन जब पूर्णता आ जाएगी तब अधूरेपन का अंत हो जाएगा। जब मैं बच्चा था, बच्चों का सा मन था, उन्हीं की तरह बातें करता था और उन्हीं की तरह सोच थी, लेकिन जवान हो जाने पर मैंने बच्चों वाली सारी हरकतें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन बाद में हमारा ज्ञान पूरा होगा, जैसे परमेश्वर मुझे पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों हमेशा बने रहने वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14। प्रेम का पीछा करते हुए आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, खासकर यह कि तुम भविष्यवाणी करो। जो अन्य भाषा में बोलता है वह लोगों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि दूसरा कोई उसको नहीं समझ पाता, वह आत्मा में भेद की बातें कहता है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाला आत्मिक विकास की, सिखाने की तथा हिम्मत बढ़ाने वाली बातें लोगों से कहता है। जो अन्य भाषा में बोलता है उसके खुद की आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह चर्च की उन्नति करता है। मेरी कामना तो यह है कि तुम सभी अन्य भाषाओं में बोलो, लेकिन इससे अधिक यह कि भविष्यवाणी करो। यदि अन्य भाषा बोलने वाला चर्च की उन्नति के लिए अनुवाद नहीं करता है तो भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाले से बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों बहनों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बोलूं और प्रकाश, ज्ञान, नबुवत या कुछ सीख न दूं तो तुम्हें मुझसे क्या फायदा होगा। इसी तरह यदि बेजान चीजें भी जिनसे संगीत निकलता है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में अंतर न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है कैसे पहचाना जाएगा? यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो लड़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा? इसी तरह से तुम भी अगर अपने मुंह से साफ तरीके से बातें न करो तो जो कहा जाता है उसे लोग कैसे समझेंगे? तुम तो हवा से बातें करने वाले समझे जाओगे। हमें नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी तरह की भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बिना मतलब की नहीं होगी। यदि मैं किसी भाषा का मतलब न समझूं तो मैं बोलने वाले के लिए विदेशी और बोलने वाला मेरे लिए विदेशी ठहरेगा। इसलिए जबकि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, चर्च की आत्मिक बढ़त का ध्यान रखो। इसलिए जो कोई अन्य भाषा में बोलता है प्रार्थना करे कि वह उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं मेरी आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन बुद्धि काम नहीं देती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा और अपने दिमाग दोनों ही से प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और समझते बूझते हुए भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तुम अपनी आत्मा से स्तुति करोगे तो जो तुम्हारी सुनता है समझ न पा सकने के कारण सहमति कैसे प्रकट करेगा? क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। इसलिए कि तुम तो अच्छी तरह से धन्यवाद दे रहे हो लेकिन सुनने वाले की कुछ भी उन्नति नहीं होती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। फिर भी चर्च में अन्य भाषा में 10,000 शब्दों के बजाय अपनी बुद्धि से 5 शब्द कहना बेहतर समझता हूँ ताकि दूसरों को सिखा सकूं। भाइयों बहनों, बच्चों की तरह सोच मत रखो लेकिन बुराई में शिशुओं की तरह बनो। समझ में जरूर सयाने बनो। नियम शास्त्र में लिखा है,
मैं इन लोगों से अन्य भाषाओं और परदेशियों के होठों से बातें करूंगा, इसके बावजूद भी ये लोग मेरी ना सुनेंगे।
यह प्रभु कहते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं लेकिन अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। लेकिन नबुवत विश्वासियों के लिए चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए नहीं। इसलिए जब पूरा चर्च इकट्ठा हो और सभी अन्य भाषाओं में बोलें, तभी अविश्वासी और इन बातों को न जानने वाले आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं समझेंगे? लेकिन यदि सभी भविष्यवाणी दें और एक अविश्वासी या अनजान व्यक्ति भीतर आए, वह तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और सभी उसे परख लेंगे। उसके मन की बातें प्रकट हो जाएंगी। वह अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करते हुए कहेगा, सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए भाइयों बहनों, तुम्हें क्या करना चाहिए? जब कभी तुम जमा होते हो, प्रत्येक के पास एक गीत, कुछ सीख, प्रकाश, अन्य भाषा का अर्थ होना चाहिए। सब कुछ इसलिए किया जाए कि चर्च की तरक्की हो सके। यदि कोई अन्य भाषा में बोलना चाहे तो एक सभा में 2 या 3 बारी बारी से ही बोले, साथ ही कोई जन उसका अनुवाद करे। किंतु यदि अनुवादक ना हो तो वह चर्च में खामोश रहे और स्वयं से तथा परमेश्वर से बोले। नबियों में से 2 या 3 ही बोलें, दूसरे लोग परखें। लेकिन अगर वहां बैठे किसी दूसरे पर परमेश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके नबुवत कर सकते हो जिससे सभी सीखें और सबको शांति मिले। नबियों की आत्माएं नबियों के नियंत्रण में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं लेकिन शांति के परमेश्वर हैं, जैसा कि पवित्र लोगों के चर्च में है। चर्च में महिलाएं चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। वे आधीनता से रहें, जैसा कि नियम शास्त्र भी कहता है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि एक महिला के लिए चर्च में बोलना शर्म की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम्हारे यहाँ ही से बाहर ले जाया गया या केवल तुम्हें ही सुनाया गया? यदि कोई अपने आप को नबी या आत्मिक समझता है तो वह यह जान ले कि जो मैं लिख रहा हूं वह प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई इसे न माने तो उसकी भी न मानी जाए। इसलिए हे भाइयों बहनों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने वाले को मना मत करो, फिर भी सब कुछ उचित तरीके और क्रम से किया जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। हे भाइयों बहनों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सुसंदेश सुनाया, तुमने उसे अपना लिया और उसमें बने भी हो। यदि इस संदेश पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो यही तुम्हें मुक्ति देता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार ठहरा। जो बात मुझ तक पहुंची थी, मैंने उसे सबसे जरूरी जानकर तुम तक पहुंचाई। वो यह कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठे। वह कैफा को और फिर बारहों को दिखाई दिए। उसके बाद वह 500 से ज्यादा भाइयों बहनों को एक ही समय में दिखे, जिनमें से अधिकतर लोग अभी जीवित हैं, हालांकि कुछ मर चुके हैं। तब वह याकूब को दिखाई दिए और फिर सब प्रेरितों को। सबसे आखिर में उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जो मानो समय से पहले पैदा हुआ हो। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, इसलिए कि मैंने परमेश्वर के चर्च को पीड़ा दी थी। लेकिन परमेश्वर के अपार कृपा से मैं अब जो हूं सो हूं। मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह बेकार नहीं रहा, लेकिन मैंने उन सब की तुलना में सबसे अधिक प्रचार किया। इसमें भी मेरा कुछ नहीं, यह उनकी कृपा का परिणाम था। इसलिए चाहे मैं या वे, हम यही आनंद का संदेश देते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। अब यदि मसीह के बारे में यह संदेश सुनाया जाता है कि वह मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, तो फिर तुम में से कुछ मरे हुओं के जिलाए जाने का इनकार क्यों करते हैं? यदि मरे हुओं का जिलाया जाना है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जिलाए गए। यदि मसीह जिलाए नहीं गए, तो हमारा सुसंदेश देना और तुम्हारा उस पर विश्वास लाना दोनों ही बेकार है। यही नहीं, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के बारे में गवाही दी कि उन्होंने यीशु को जिलाया। लेकिन यदि मरे लोग जिलाए नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर ने मसीह यीशु को भी नहीं जिलाया होता, क्योंकि यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते, तो मसीह भी जिलाए नहीं गए। यदि मसीह को जिलाया नहीं गया, तो तुम्हारा विश्वास लाना बेकार है और तुम अभी तक अपने गुनाहों के कारण सजा के अधीन हो। इसके अलावा मसीह पर विश्वास लाने के बाद जो लोग मरे, वे भी नाश हो गए। इसलिए यदि मसीह पर हमारी आशा केवल इस जीवन के लिए ही है, तो दुनिया में हम लोग सचमुच सबसे अधिक दुखी लोग होंगे। लेकिन मसीह सचमुच मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वो पहले फल हैं। इसलिए कि जब एक इंसान के द्वारा मौत आई, इसलिए मरे हुओं का जी उठना भी एक इंसान से ही हुआ। जिस तरह से हर इंसान मरता है, क्योंकि हम सभी आदम से हैं, हर वह इंसान जो मसीह का है उसे जिला दिया जाएगा। लेकिन जिलाए जाने में भी क्रम है। फसल के पहले हिस्से की तरह मसीह का जी उठना था, मसीह के आने पर वे भी जी उठेंगे जो उनके हैं। उसके बाद अंत आ जाएगा, उस समय वह सारे शासन अधिकार और सामर्थ को समाप्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के सुपुर्द कर देंगे। जब तक मसीह अपने सारे दुश्मनों को अपने पैरों तले न ले आए, उनका राज्य करना जरूरी है। सबसे आखिरी दुश्मन जिसका अंत किया जाएगा वो मौत है, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। इसलिए जबकि लिखा है सब कुछ उनके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि इसमें वह नहीं है जिन्होंने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया। जब सब कुछ उनके अधीन हो जाएगा जिन्होंने सब कुछ उनके अधीन कर दिया, ताकि सब जगह सब बातों में परमेश्वर ही सब कुछ हो, तब पुत्र भी खुद उनके अधीन हो जाएगा। नहीं तो जो लोग मर चुके लोगों के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उनका क्या? यदि मरे हुओं का जी उठना नहीं है, तो फिर उनके लिए बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? हर दिन हम क्यों जोखिम का सामना करते हैं? हे भाइयों बहनों, मेरे उस घमंड की वजह से जो मसीह यीशु में हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, मैं यह पुख्ता तरीके से कहता हूं कि मौत हर रोज मेरे सामने खड़ी रहती है। यदि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं तो इफिसुस में जंगली जानवरों से संघर्ष करने से क्या लाभ था, और ये भी कि आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखे में मत रहो, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। भलाई और भक्ति के लिए जाग उठो, अपने पाप में जीना बंद करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, यह मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूं। कोई कह सकता है, मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, किस तरह की देह के साथ हुए जी उठेंगे? क्या मूर्खता का सवाल है। जब तुम एक बीज जमीन में बोते हो, जब तक वह मरता नहीं उसमें से पौधा नहीं निकलता, और जो तुम बोते हो यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, लेकिन सिर्फ दाना ही है, चाहे वह किसी भी अनाज का दाना हो। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देते हैं। हर एक बीज के पास उसकी अलग किस्म की देह होती है। सभी देह एक सी नहीं है, लेकिन मनुष्यों की देह, पशुओं की देह, पक्षियों की देह और मछलियों की देह, सभी में अंतर है। स्वर्गिक देह है और पार्थिव भी, लेकिन स्वर्गिक देहों के तेज और पार्थिव देहों के तेज में अंतर है। सूर्य, चंद्रमा और तारों का तेज एक सा नहीं है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में फर्क है। मरे हुओं का जी उठना भी ऐसा ही है। देह नाशमान स्थिति में बोई जाती है और अविनाशी स्थिति में जी उठती है। बेइज्जती के साथ देह बोई जाती है और तेज के साथ जी उठती है। कमजोरी के साथ बोई जाती है और शक्ति के साथ जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, लेकिन आत्मिक देह जी उठती है। इसलिए कि स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है कि पहला इंसान अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और आखिरी आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। पहले स्वाभाविक था, आत्मिक नहीं था, बाद में आत्मिक हुआ। पहला इंसान धरती अर्थात मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गिक है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही दूसरे मिट्टी के हैं, जैसा वह स्वर्गिक है वैसे ही और भी स्वर्गिक हैं। जैसे हमने उसका रूप पाया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी पाएंगे। हे भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूं कि मांस और खून परमेश्वर के राज के हकदार नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे रहस्य की बात कह रहा हूं कि हम सभी सोएंगे नहीं, लेकिन सभी बदल जाएंगे, और यह पल भर में पलक मारते ही आखिरी तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि इस नाशमान को अविनाशी और मरणशील को अमरता को पहनना जरूरी है, लेकिन जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तब यह लिखित वचन पूरा हो जाएगा,
मौत को विजय ने निगल लिया है।
हे मौत,
तुम्हारी जीत कहाँ है? हे मौत, तुम्हारा डंक कहाँ?
मौत का डंक तो पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मजबूत बने रहो और यीशु के काम में हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी मेहनत प्रभु में बेकार नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16। अब उस दान के बारे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने गलातिया के चर्च को करने के लिए कहा था। हर एक जन अपनी आमदनी के आधार पर सप्ताह के पहले दिन अपने पास कुछ बचा कर रखे, तब मेरे आने पर तुम्हें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। मेरे आने पर तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचाने के लिए जिन्हें तुम कहोगे उन्हें चिट्ठियां देकर भेज दूंगा। यदि मेरा जाना भी जरूरी हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना भी है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और सर्दी तुम्हारे यहाँ ही काटूं, फिर जिधर मेरा जाना तय हो तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब रास्ते में तुमसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन मेरी उम्मीद है कि यदि प्रभु चाहें तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन पेंटिकॉस्ट तक मैं इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और फायदेमंद दरवाजा खुला है और खिलाफत करने वाले कई हैं। तुम्हारे यहाँ तिमोथियस के आने पर ध्यान देना कि वह तुम्हारे यहाँ बिना किसी डर के रहे, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न समझे, लेकिन कुशल से इस तरफ पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह भाइयों के साथ आए। भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत कहा है कि भाइयों के साथ वह तुम्हारे पास जाए, लेकिन इस समय उसने जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। समय आने पर वो आ जाएगा। सतर्क रहो, विश्वास में मजबूत रहो, लोगों की मदद करो, शक्तिशाली बनो, सब कुछ प्रेम से करो। हे भाइयों बहनों, तुम स्तिफनास के परिवार को जानते हो कि वे अखाया के पहले विश्वासी हैं। वे पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, हर उस व्यक्ति के भी जो इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करता है। मैं स्तिफनास, फुर्तनातुस और अखैकुस के आ जाने से खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कमी को पूरा किया है। उन्होंने मेरे और तुम्हारे दिल को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को आदर दो। एशिया के सभी चर्चों की तरफ से तुम्हें सलाम। अक्विला और प्रिसिल्ला का और उनके घर के चर्च का भी तुमको प्रभु में बहुत आशीर्वाद। सभी भाइयों का तुमको सलाम। पवित्र आलिंगन से आपस में सलाम करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ सलाम। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह दंडित हो। हमारे प्रभु आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मसीह यीशु में मेरा प्रेम तुम सबको मिले, ऐसा ही हो।